मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 9 दिसंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं ज्यादा लोकतंत्र इस विषय पर आप सबसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले दो घटनाओं को देख लेते हैं। जो पहली घटना है इसे आप न्यूज कह लीजिए, इसका संबंध माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से है। अखबारों में भी ये खबर छपी है और कल जो DD न्यूज था उसमें भी ये खबर आई थी और दूसरे चैनल्स पर भी ये खबर थी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग खबर है और महत्वपूर्ण भी है। अब ये बात अलग है कि एग्जामिनेशन में ये कितना पूछा जाएगा, वो एक अलग बात है। दोस्तों अभी जो ऊंचाई की बात कही गई है इसमें और पहले जो ऊंचाई हम माउंट एवरेस्ट की जानते हैं उसमें 1 मीटर से भी कम का ही हालांकि फर्क है, लेकिन फर्क है। पहले जो इसकी ऊंचाई बताई गई थी आप पढ़ते हैं 8848 मीटर, 8848 मीटर, याद रखिए ये मीटर में है, और अब जो बताई गई है वो है 8848.86 मीटर। यहां 86.86 मीटर ज्यादा है, यानी कि 1 मीटर से थोड़ा सा कम, 86। अगर ये पूरा 100 होता तो फिर 1 मीटर हो जाता, राइट? ये इसकी नई ऊंचाई है, तो आपके दिमाग में ये बात दर्ज हो जानी चाहिए, खासकर दूसरे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हो सकता है कि इस पर पूछ लिया जाए। ये जो अभी नई ऊंचाई जो जारी की गई है, चीन और नेपाल इन दोनों देशों ने मिलकर इसे जारी किया है। देखिए इसमें भारत का नाम नहीं है। आप जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय पर्वत से संबंधित है और हिमालय पर्वत का इतना बड़ा हिस्सा भारत में है। तो यहां मैं आप सबको एक होमवर्क दे रहा हूं और पूरे माफीनामे के साथ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी कि जो मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं उससे आप लोग मुझ पर झुंझलाने न लगे, दोषारोपण न करने लगे, यह सोचकर कि सर हम लोग तो आपका डेली ऑडियो लेक्चर इसलिए थोड़े सुनते हैं कि हमको होमवर्क मिले, हम तो इसलिए सुनते हैं कि हमको पका पकाया खाने को मिले, यानी कि सुनने को मिले। अगर किताबी पलटना है, कुछ सोचना विचारना है, तो फिर आपके डेली ऑडियो लेक्चर की क्या जरूरत है। दोस्तों यहां मैं बताना चाहूंगा कि सच में अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को मजबूत तो बनाना पड़ेगा, चिंतनशील तो बनाना पड़ेगा, और यहां तक कि अगर आप वास्तव में एक बहुत अच्छे नागरिक के रूप में एक बहुत अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं तब भी बहुत जरूरी है कि आपका दिमाग चिंतनशील बने, केवल रटने वाला एक औजार जैसा बन करके न रह जाए, मशीन जैसा बन करके न रह जाए। तो दोस्तों अब आपको सोचना केवल ये है कि ये जो नई ऊंचाई जारी की है चीन और नेपाल ने मिलकर जारी की है, इसमें भारत क्यों नहीं है, इसका उत्तर आप अपने लेवल पर ढूंढें। जो दूसरी खबर है दोस्तों वो ओलंपिक गेम को लेकर के है। आपको मालूम है कि 2020 में जो ओलंपिक होना था वो टोक्यो में होना था, लेकिन कोविड के कारण टोक्यो में वो गेम नहीं हो सके। अब आगे अब ये जुलाई में अब ये टोक्यो में फिर से होने हैं, लेट अस होप कि ये गेम हो जाएंगे। लेकिन यहां मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो 2024 ओलंपिक की बात है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने हैं 2024 में। न्यूज ये है कि इसमें अब ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है, ब्रेक डांस। अब ये ब्रेक डांस क्या है मेरे से अधिक आप जानते हैं। ब्रेक डांस एक ऐसा डांस जिसमें आप झटके देते हैं, ब्रेक टुकड़े 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 झटके वाले डांस, इसे ब्रेकिंग के नाम से भी जाना जाता है इस डांस को, और ओलंपिक में सच पूछे तो इसी के नाम से जाना जाएगा, ब्रेकिंग। बेसिकली ये एक सड़क का नृत्य है, जैसे कि आप सड़क पर चल रहे हैं और नृत्य करते हुए चल रहे हैं। अफ्रीका और अमेरिकन लोगों के बीच में इसे हिप हॉप कल्चर के रूप में जाना जाता है, ये इस कल्चर के रूप में डेवलप हुआ है। तो ये आपके दिमाग में थोड़ा सा दर्ज हो जाना चाहिए कि 2024 के ओलंपिक में जो पेरिस में होने हैं उसमें अब ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। यही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो टोक्यो ओलंपिक जो होने थे अब जो जुलाई में होंगे अगले साल, उसमें कुछ और नए खेल शामिल किए गए थे। जब खेल होंगे, जब ओलंपिक होंगे तो वो खेल होंगे, उसमें थे स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ये तीन खेल शामिल किए गए थे, राइट। बस थोड़ी सी जानकारी आप इसके बारे में रखिए। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है ज्यादा लोकतंत्र। ये टॉपिक कुछ आपको पटांग सा लगा होगा ना कि ये ज्यादा लोकतंत्र और कम लोकतंत्र क्या है। मुझे नहीं मालूम कि इंग्लिश में किस शब्द का उपयोग किया गया था दोस्तों, लेकिन हमारे जो नीति आयोग के CEO हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया, कल ही एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है। ये हिंदी में आया है, मैं सॉरी कि मैं इंग्लिश कम का वक्तव्य नहीं देख पाया। भारत में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है जिसके कारण यहां कड़े सुधारों को लागू करना कठिन होता है, ये उन्होंने कहा है। पूरा सेंटेंस मैंने आपके सामने रख दिया। यहां इन्होंने कहा इसका अर्थ यह हुआ, यह हम लोग इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। यह हालांकि थोड़ा सा अलग तरह का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय जरूर है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, और विचार करने लायक यह विषय है भी, और हो सकता है कि इसको लेकर के आगे आर्टिकल लिखे जाए। देखिए, यहां ज्यादा लोकतंत्र शब्द का जो प्रयोग किया गया, इसका मतलब ही यह है कि बहुत ज्यादा लिबरल डेमोक्रेसी है ना, मतलब पूरी तरह से डेमोक्रेसी है, बहुत अधिक डेमोक्रेसी है, यानी कि लोगों को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। कुछ इसी सेंस में होगा ना, ज्यादा लोकतंत्र है, क्योंकि यहां आगे वो यही कहते हैं कि जिसके कारण यहां कड़े सुधारों को लागू करना मुश्किल हो गया है। अभी आप देख रहे हैं कि सरकार कृषि कानून लेकर के आई, तीन कानून बनाए गए और उसके खिलाफ किस तरह से आंदोलन हो रहा है। इससे पहले सरकार ने श्रम कानून बनाए थे, श्रम संहिता लागू की थी, उसको लेकर भी श्रमिकों के आंदोलन हुए, कुछ संकट खड़े हुए, उसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई। माइनिंग के क्षेत्र में, खासकर कोयला के क्षेत्र में, जब सरकार कुछ और इस तरह के कदम उठाती है तो उसकी आलोचना होने लगती है, या लोग पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जनहित याचिका दायर हो जाती है, इस तरह के घटनाएं होने लगती हैं। या आप ये कह लीजिए कि सरकार जब इस तरह के कुछ सुधार संबंधी एक्शन लेती है तो उसके रिएक्शन में इस तरह की बातें होने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में ही शायद हमारे जो CEO हैं साहब, उन्होंने कहा कि, अमिताभ कांत नाम आपको मालूम है, उन्होंने कहा कि यहां कड़े सुधारों को लागू करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, यानी कि उनका विरोध होने लगता है। अब इस विषय को आपको एनालाइज करना है। मान लीजिए कि आपको खड़ा कर दिया गया है, आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने हैं, और आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि इसे कैसे देखते हैं, इस कथन को आप किस रूप में लेते हैं, या ये कथन कितना सही है कितना गलत है, आपको क्या लगता है कि क्या सच में भारत में ज्यादा लोकतंत्र है। दोस्तों अब ये आपको विचार करना होगा इस पर कि जो बात कही गई है इसमें सच्चाई कितनी है। देखिए होता क्या है, कल भी मैंने आप सबको इसके बारे में सतर्क किया था, और शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि परसों भी मैंने सतर्क किया था कि जब कोई भी घटना घटित होती है तो हमारा अपना जो संतुलन है वो कितना बना रह पाता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि जब घटना घटित होती है तो सामान्यतया हम रिप्लाई नहीं देते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। प्लीज मेरे शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम रिप्लाई नहीं करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। और बीइंग ए सिविल सर्वेंट, जब आप बन जाएंगे तब भी, और अभी जब आप बनने की प्रक्रिया है तब भी, आपको रिप्लाई देना है, रिएक्ट नहीं करना है। आपको ध्यान रखना होगा इस बात का। रिप्लाई और रिएक्ट में क्या फर्क है? रिप्लाई का मतलब है कि आप बहुत ही सोच समझ कर अपना उत्तर दे रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि सिविल सर्विस मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, तर्क संगत उत्तर दीजिए, इसके पक्ष या विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए, समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ना। तो अब ये जो तर्क संगत या आलोचनात्मक या समीक्षात्मक या तर्क, इन शब्दों का अर्थ क्या हुआ? इन शब्दों का अर्थ ही यही है कि आप अपने विचारों को किनारे कीजिए, कि आप रिएक्ट मत कीजिए, आप उस पर विचार कीजिए। विचार करने का मतलब है कि आपके हाथ में तराजू है और तराजू के दो पलड़े हैं, उन पर दोनों पलड़ों पर जो भी प्लस माइनस चीजें हो सकती हैं उनको रख करके बकायदे उनको तौलिए, और तौलने के बाद फिर जो आपको सही लगता है आप वह बताइए, राइट। तो अब यहां जो हम ज्यादा लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में यह तथ्य आना चाहिए कि कम लोकतंत्र और ज्यादा लोकतंत्र क्या है। क्या सच में कम लोकतंत्र भी होता है या ज्यादा लोकतंत्र भी होता है, या यहां जो सीईओ साहब ने रिएक्ट किया, ये रिएक्शन है, ये बेसिकली ये रिएक्शन है, ये सोचा समझा वक्तव्य नहीं, जो मुझे लग रहा है व्यक्तिगत तौर पर। रिएक्शन इस मायने में है कि शायद यह बात कहते हुए उनके दिमाग में चीन मौजूद होगा। देखिए, अभी हमारा जो सही प्रतिद्वंदी है आर्थिक जगत का, आप यूं कह लीजिए, अगर हम प्रतिद्वंदी माने तो वो चाइना ही है। एशिया के दो ही बड़े देश हैं, तो चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, सीधे सीधे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां तो सीधे कम्युनिस्ट सरकार है, तो वहां तो सरकार कुछ भी लागू कर देगी, कोई चू चपड़ नहीं कर सकता है, जनता को कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर अधिकार जनता कुछ कहती है तो सत्ता के पास बहुत बड़ी शक्ति है। हम जब यहां कर रहे हैं तो यहां तुरंत उसका विरोध होने लगता है, तो शायद उनके दिमाग में चाइना रहा हो। सिस्टम दोनों का अलग है, भारत में डेमोक्रेसी है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। तो क्या अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है तो अपने यहां कम डेमोक्रेसी को ला करके हम उनका मुकाबला करें? आपको देखना होगा इन सब बातों को। तो क्या हम, अगर मान लीजिए कि सरकार कोई भी कानून बनाती है या कोई नीति घोषित करती है, तो क्या उसके खिलाफ आवाज उठाना एक तरह से ज्यादा लोकतंत्र का प्रतीक है? मतलब मैं आपको एंगल दे रहा हूं। फिर भारत में जिस तरह का लोकतंत्र है या लोकतंत्र पर जिस तरीके के दबाव हैं या जो बाधाएं हैं, उनके बारे में आप सोचिए। मैं आपको सोचने के रास्ते बता रहा हूं, क्योंकि देखिए, आप सीधे सीधे ज्यादा लोकतंत्र तक अपने को सीमित कर देंगे तो आपके दिमाग में फिर तथ्य नहीं उभरेंगे, आपको रास्ते तलाश करने पड़ेंगे ना। आप अपने दिमाग को रास्ता दिखाइए कि अच्छा, तुम इस रास्ते पर जाकर सोचो, अच्छा तुम इस रास्ते पर जाकर सोचो, अच्छा तुम इस रास्ते पर जाकर सोचो, तो आपका दिमाग उन रास्तों पर निकल पड़ेगा, और जब वो निकल पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो आपको प्रोवाइड कर ही देगा, और वही आपके लिए सफिशियंट होगा, वो प्रोवाइड करेगा। फिर आप भारत के लोकतंत्र के बारे में सोच करके देखिए कि क्या भारत में वास्तविक लोकतंत्र है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज के ही अखबार में एक खबर छपी है कि अभी बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, उस बिहार विधानसभा चुनाव में जो लोग जीते, जो अब जनप्रतिनिधि के रूप में वहां के विधानसभा में मौजूद हैं, उनका जो औसत मत रहा, उन्हें जो मत मिले हैं औसतन, वो 25.23% है, मोटे तौर पर 25%, यानी कि औसतन जिनको 25% मत मिले वो बकायदे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लोकतंत्र बहुमत का खेल है, मतलब 50+ होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में सरकार वही बनाते हैं जिसके पास आधे से अधिक सदस्य होते हैं, संसद में भी वही सरकार बनाते हैं जिसके पास आधे से अधिक सदस्य होते हैं। लेकिन जब हम यहां सदस्यों के बारे में व्यक्तिगत तौर पर मतदानों को देखते हैं तो 25% में बन जाते हैं, यानी कि 75% ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। अगर मत देने नहीं भी आए, ये तो मतदान का प्रतिशत है ना 25%, अगर मत देने नहीं भी आए तो कहीं ना कहीं तो लग रहा है ना कि भाई ठीक है यार, चलो छोड़ो। तो जब आप इस डेटा को यूज करेंगे कि 25% मत पाने वाले व्यक्ति हमारे जनप्रतिनिधि हो रहे हैं, तो फिर से आप एक सवाल खड़ा कर सकते हैं, तो क्या सच में ये लोकतंत्र है? तो दोस्तों, इस तरीके से आपको ढेर सारी बातें मिलेंगी, और मैं चाहूंगा कि आप उन सबका इस्तेमाल करते हुए इस पर अच्छे से विचार करें। मैं अपनी तरफ से आपसे कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूं, हाँ अगर बाद में मुझे लगा कि ठीक है कुछ बात की जानी चाहिए तो हो सकता है कि फिर मैं अपनी बात रखूं। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, सगुना श्रीमाली सानंद गुजरात से और नेहा सिंह भोजपुर बिहार से, आप सबका बहुत बहुत आभार। सगुना, आपने जो ईमेल के जरिए जो पूछा है मुझसे, प्रश्न किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए। वैधानिक रूप से जो भी अधिकार आपको दिए गए हैं, आपको उन अधिकारों का उपयोग करना चाहिए, ताकि आप आगे जाकर के स्वयं अधिकार संपन्न होकर के अपने लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकें। तो दोस्तों, अब इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।